प्रातः क्लास चल रहा था, पांच ग्यारह 1966 शनिवार को आठवें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है क्योंकि शिव बाबा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म ही यहाँ होता है भारत में। कौन जन्म लेते हैं? हैं? शिव जन्म लेते हैं। शिव निराकार बिंदी का नाम है या साकार का नाम है? निराकार बिंदु का नाम है तो निराकार ज्योति बिंदु सदा शिव है। या यहाँ भारत में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं? है
भारत में प्रत्यक्षता रूपी जन्म,
उससे पहले नहीं है? बरोबर, वो आता तो होगा, आत्माओं का बाप है ना? तो कुछ देता होगा ना?
की देता है
तो बाप देता है, तो जो दुनिया में खास भारत में परंपरा चल रही है, हिस्ट्री में भी आया हुआ है कि जो भी राजाएं हुए हैं, जो भी बाप हुए हैं, उन्होंने अपने कौन से बच्चे को राजा ही या वर्षा दिया? तो उस बिंदु बाप के पास कौन सा वर्षा है?
ज्ञान धर्म का वर्षा है।
उसके पास वो वर्षा है जिसके लिए गीता में बोला है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम इह विद्यति। इस दुनिया में भी ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। वो ज्ञान का अखूट भंडार है। ज्ञान का भंडार है या अज्ञान का भंडार है? ज्ञान माने जानकारी का भंडार है, तो सत्य का भंडार है या असत्य कहो अज्ञान कहो उसका भंडार है? सत्य का भंडार है। कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो आकर के अखूट सत्य कहो अखूट ज्ञान कहो तीनों काल का ज्ञान देता है। वही क्यों देता है? और भी तो आत्माएं हैं, बड़े बड़े महान धर्म पिताएं भी तो हुए, वो भी तो आत्माएं हैं। वो क्या सच्चाई का वर्षा नहीं देती? अज्ञान का वर्षा देती है? वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं। और शिव बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, क्योंकि उस आत्मा को अपना शरीर ही नहीं है। जिस शरीर से वो कर्म करे विकर्म करे पाप पुण्य कमाए और उस पाप पुण्य के बदले में सुख और दुख भोगे, वो तो अभोक्ता है, त्रिकालदर्शी है। इसलिए तीनों कालों का ज्ञान देता है। बरोबर ऊंचे ते ऊंचा भगवंत वो पतित पावन है, ऊंची ते ऊंचा भगवंत ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा कहाँ की बात है? शिव की बात है। साकार सृष्टि में ही ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा। परम धाम की बात नहीं है, वहां ऊंच नीच का सवाल नहीं है। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जो इसे साकार दुनिया कहे, ऊंचे ते ऊंचा आत्मलोक का नहीं, साकार सृष्टि का। और पतित पावन भी है, पतितों को पावन बनाने वाला पतित पावन। और फादर है, फादर माना जन्मदाता है। काहे का जन्मदाता?
अरे
फादर पहले पहले तो जन्मदाता होता है ना? नहीं? अरे होता है या नहीं? होता है। तो वो फादर किसका बाप है?
देवताओं का बाप है।
देवताओं का बाप देवता होगा, क्योंकि देवताएं जीवन मुक्ति वाले हैं, जीवन में रह करके सुख भोगते हैं। इसलिए जीवन में रहने वालों का बाप भी जीवन में रहने वाला होना चाहिए। वो शिव जीवन मुक्ति नहीं भोगता। जो बाप स्वयं नहीं भोगता जो वर्षा स्वयं नहीं बाप भोगता वो बच्चों को कैसे देगा। धनवान बाप धनवान का वर्षा देता है तो धन भोगता है, जमींदार बाप जमीन भोगता है तो बच्चों को भी देता है जमीन का वर्षा। जीवन मुक्ति भोगने वाला बच्चों को भी जीवन मुक्ति का वर्षा देता है और फिर उसका जन्म भी गाया हुआ है। उसकी जयंती भी मनाई जाती है। जयंती माने अंत में जय जयकार हुई है उसकी। जय जयकार कब होती है? युद्ध के बाद जय जयकार होती है या बिना युद्ध के जय जयकार होती है? तो कौन से युद्ध की बात है? है ज्ञान का युद्ध। अज्ञान से युद्ध, युद्ध करने वाला क्या कहा जाता है? योद्धा। युद्ध करने वाला योद्धा कहा जाता है। और शिव योद्धा है, युद्ध करता है, तो करता हुआ या अकर्ता हुआ है? वो तो अकर्ता है। तो युद्ध कौन करता है? निराकार करता है, सदाशिव करता है या सदाशिव जिस मुकरर रथ में आता है वो युद्ध करता है? है जिस रथ में आता है वो युद्ध करता है। शिव की आत्मा को कोई प्रकार का युद्ध करने की दरकार है ही नहीं। न वो विजयी होता है न वो हार खाने वाला है। उसकी तुलना कोई भी आत्मा से नहीं की जा सकती। वो तो तुरीय आत्मा है। हाँ ये जरूर कहता है मुकर्रर रथ में आकर के कि मैं आता हूँ इस सृष्टि में, पतित दुनिया में, पतित तन में आता हूँ, तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाता हूँ। निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बना कर जाता हूँ। मैं बनाकर जाता हूँ कि यह तुमको मुझे समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनने का रास्ता बताता हूँ, बनाता हूँ या रास्ता बताता हूँ। बनाता नहीं हूँ है? हाँ जी, युक्ति बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। मैं यदि निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाऊं तो पक्षपाती कहलाऊंगा, इसको क्यों बनाया, उसको क्यों नहीं बनाया, तो क्या करता हूँ है? रास्ता बताता हूँ, श्रीमत देता हूँ। क्या देता हूँ? श्रीमत। श्री माने क्या है? श्रेष्ठ मत देता हूँ। श्रेष्ठ मत देने वाला स्वयं श्रेष्ठ होगा या भ्रष्ट भी होगा? श्रेष्ठ और भ्रष्ट कौन सी दुनिया की बात है? तो जो श्रेष्ठ मत देने वाला है उसको श्रेष्ठ मत देने वाला कहेंगे, प्रैक्टिकल में देने वाला है या सिर्फ थ्योरी बताता है, प्रैक्टिकल में देता है? वो तो कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे हो। मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को क्यों कहा? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकल करने वाले तुम बच्चे हो। शिव करता है, है? अगर करे तो करता हुआ, और वो तो अकरता है। इसलिए वो सिर्फ रास्ता बताता है, थ्योरी बताता है। थ्योरी बताने के लिए किसको निमित्त बनाता है? है साकार रथ को। अरे मैं जिस रथ में आऊंगा साकार में ही आऊंगा, और उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और ब्रह्मा नाम को ये एक का थोड़े ही है, ब्रह्मा नामधारी तो और भी है ना। तो थ्योरी किसके द्वारा बताता हूँ? मुकर्र रथ के द्वारा थ्योरी बताता हूँ। ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा क्या बताया? थ्योरी या प्रैक्टिकल है? थ्योरी गीता ज्ञान दिया, उसको गीता ज्ञान कहेंगे। उस गीता ज्ञान को प्रैक्टिकल में अनुभव करने वाला दादा लेखराज ब्रह्मा को कहेंगे। हाँ? नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से शास्त्रों में भी लिखा है वेद निकले, वेद वाणी निकले, वो वेद वाणी देवताएं तो सुनते सुनाते हैं ही नहीं। वो प्रैक्टिकल में सार रूप में धारण करते हैं या देवताएं सुनते सुनाते हैं, क्या करते हैं? प्रैक्टिकल में सार रूप में ज्ञान का जो सार ज्योति बिंदु है उसमें टिक जाते हैं सारे जीवन के लिए। तो वो तो प्रैक्टिकल हो गए कि सिर्फ थ्योरी में रहे, हैं? थ्योरी में रहे या प्रैक्टिकल हो गए? प्रैक्टिकल हो गए। तो उन देवताओं को प्रैक्टिकल करना किसने सिखाया? कौन है वो गीता ज्ञान को प्रैक्टिकल में सिखाने वाला? शिव बाबा और शिव बाप में क्या अंतर है? कुछ अंतर है या एक ही है? है? क्या अंतर है?
शिव बाप में रहता है, बाबा साहब
बाप होने से आप लोगों का बात होता है, बाबा साहब अपनाओं का बाप भी हो गया, मनुष्य सृष्टि का बाप भी हो गया।
मना शिव कहेंगे तो निवृत्ति साबित होती है या प्रवृत्ति साबित होती है? हैं? निवृत्त है, प्रवृत्त नहीं है। और शिव बाबा कहेंगे तो साकार और निराकार की प्रवृत्ति है। तो कब से प्रवृत्ति है? हम कहेंगे संगम युग जब से शुरू हुआ तब से प्रवृत्ति है। है? है या नहीं है? है 100% प्रवृत्ति है या परसेंटेज में प्रवृत्ति है? है 100% कहेंगे सन 36 में। अरे नहीं कहेंगे, क्योंकि 100% प्रवृत्ति होती तो जहां 100% प्रवृत्ति होती है माता पिता के बीच वहां परिवार का संगठन बनेगा या बिगड़ेगा? लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में 36-37 में जो ब्राह्मणों का संगठन बना वो 45-42 से लेकर 47 के बीच ओम मंडली का आ जाने वाला ब्राह्मणों का संगठन खलास हो गया या बच गया? क्या हुआ? बिगड़ गया। तो प्रवृत्ति पक्की थी या कच्ची थी? है पक्की थी, कच्ची थी, क्योंकि अल्पकाल की प्रवृत्ति बनी। शास्त्र में भी यही आया है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची, 3 बार पसंद नहीं आई तो बिगाड़ दी। पहली बार बिगाड़ी तो ओम मंडली नाम का ब्राह्मणों का संगठन खलास हो गया। दूसरा ब्राह्मणों का संगठन दूसरी बार बना, कब? कब बना? है 47 में, 1947। प्रूफ है ब्रह्मा के द्वारा बोले हुए महावाक्य में प्रूफ है। क्या प्रूफ है? है प्रूफ है कि कैसे माने कि इनमें शिव बाप भगवान है, कब मानेंगे? है जब ज्ञान देते हैं, सच्चाई बताते हैं तीनों काल की, जो अखंड सच्चाई है उसको कोई खंडन नहीं कर सकता। तो 47 में जिस तन के द्वारा वो सत्य गीता ज्ञान दिया, वो गीता ज्ञान अमृत तो कहा गया। पीने वाले गीता पाठी ब्राह्मण भी कहे गए और उस संगठन का नाम बदल गया। क्या हुआ? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी थी। वो प्रवृत्ति भी बिगड़ गई। 1965-66 में जब सरस्वती ने शरीर छोड़ दिया और उसका स्थान कोई दूसरी ब्रह्मा कुमारी ने ले लिया, जिसके लिए मुरली में बोला हम ब्राह्मणों के संगठन में सबसे जास्ती खातिरी कुमारिका की होती है। अरे परिवार में माता पिता सर्वोपरि होते हैं, तो ब्रह्मा के साथ माता हुई ना, मम्मा का स्थान लेने वाली कौन हो गई? कुमारिका नहीं हुई। तो देखो यहां भी प्रवृत्ति की विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। और दो तीन वर्ष के बाद जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो पूरी प्रवृत्ति बिगड़ गई। माता पिता ही नहीं रहे तो वसुदैव कुटुंबकम बनेगा है? एक कुटुंब के एक मुखिया ही नहीं रहे तो सारी वसुधा सारी दुनिया एक कुटुंब नहीं बन सकती। इस तरह ब्राह्मणों का दूसरे संगठन की विघटन की आवृत्ति शुरू हो गई। कैसे माने? ब्रह्म वाक्यों में ही प्रूफ दिया है। क्या प्रूफ है? विघटन का प्रूफ है। जैसे ब्रॉड ड्रामा में ढाई हजार साल पहले इब्राहिम आया, तो अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लिया, झगड़ा हो गया, भारत खंड अलग हो गया, अरब देश अलग हो गया। ऐसे ही अलगाव बढ़ता चला गया। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के उसी वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन का प्रूफ आ गया। जोनल इंचार्ज बना दिए गए। पहले सभी ब्राह्मणों का संचालन माउंट आबू से होता था, फिर क्या होने लगा? सारा संचालन वितरित कर दिया गया अलग अलग स्टेट्स की। अलग अलग ब्रह्मा कुमारियां इंचार्ज बन गई। उसी वर्ष में 69 में जब दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और भी ब्रॉड ड्रामा में द्वैतवादी द्वापर युग आने पर विदेशों में राज सत्ता शुरू हो जाती है। तो पहला पहला विदेशी सेंटर कहाँ खोला गया याद है? लंदन में खोला गया। ढेर सारे ऐसे प्रूफ हैं द्वैतवाद फैलाने वाले। दुनिया का विघटन शुरू करने वाले जिनकी व्याख्या महावाक्यों के रूप में सच्ची गीता खंड एक के सीढ़ी के चित्र में दी गई है। उस दूसरे ब्राह्मण संगठन का संपूर्ण विघटन जिसका इशारा ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी मुरली में ही दिया है याद है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी घोषणा है, ज्ञानमत पत्रिका में भी वो घोषणा छपी थी। नहीं याद आया? मुरली में बोला 66 में 10 वर्ष में इन ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विघटन विनाश हो जाएगा और लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। जो सन 76 में सभी ब्राह्मणों ने बाप के प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में मनाया। कौन सा बाप? इस मनुष्य सृष्टि का कौन सा बाप? हद के बापों में से नहीं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि भी नहीं। क्राइस्ट भी 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है। क्रिश्चियंस उसे अपना बाप मानते हैं, वो भी हद में है। पूरी सृष्टि उसे बाप नहीं मानती और धर्म वाले नहीं मानते। लेकिन समूची सृष्टि का बाप जगत पिता उसकी तरफ इशारा दिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। परंतु ये बात कोई ने जानी नहीं। ब्रह्मा कुमारियों ने समझा कि शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। अरे सन 76 से पहले बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हो रही थी क्या? हो रही थी ना, तो 76 को ही क्यों कहा गया? क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में और भक्ति मार्ग में भी जो आत्मा परम ब्रह्म के रूप में साकार में मानी जाती है, जिसे बाबा बोलते हैं, शिव बाप बाबा के रूप में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, किस दुनिया की बात है, साकार दुनिया की बात है। शास्त्र में भी बोला और हमने भक्ति मार्ग में भी 2500 वर्ष माना, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। कैसा ब्रह्म? अप्रत्यक्ष ब्रह्मा नहीं, प्रत्यक्ष ब्रह्म, साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को हम नमन करते हैं, नमन करना बुद्धि से झुकने की बात है। सर झुकाने या दंडवत प्रणाम करने की बात नहीं है, सर झुकाना माना बुद्धि झुकाना, माना उसकी मत पर चलना, उसकी मत के आगे हम अपनी मत झुका देते हैं। वो हुआ प्रैक्टिकल में नमन करना, भक्ति मार्ग में तो न जानते हैं परम ब्रह्म को और न बुद्धि झुकाने की बात है। बात तो समझ लेते हैं आत्मा सो परमा, हम सब परमात्मा है, लेकिन गीता में जो पढ़ते हैं उस श्लोक की व्याख्या को नहीं जानते, जिस श्लोक में कहा है कि मूल रूप में दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक क्षर और दूसरी है अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली आत्माएं, पतित होने वाली आत्माएं, शक्ति क्षीण करने वाली आत्माएं, और दूसरी अक्षर जो कभी भी क्षरित नहीं होती, इस पतित दुनिया में आती है, पतित शरीर में आती है, तो भी उसके संग के रंग से क्षरित पतित नहीं होती। बाकी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो सब इस दुनिया में आकर के पतित बन जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी पतित बनाते हैं। लेकिन एक तीसरी आत्मा का और भी जिक्र है उसी श्लोक में, क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच में एक ऐसी आत्मा भी है जिसके लिए गीता में शब्द आए हैं, परमात्मा इति उदाहरत, उसे परमात्मा कहा जाता है। भक्ति मार्ग में समझते थे, हम सब आत्माएं मनुष्य आत्माएं हो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हो, कीटाणु हो, सब आत्माएं क्या है? आत्मा सो परमात्मा। ऐसी उल्टी व्याख्या कर दी, इसलिए कोई का कंसंट्रेशन परमात्मा को न पहचानने के कारण बना ही नहीं। बजाय बुद्धि एकाग्र होने के और ही बिखरती चली गई। तो बताते हैं कि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। हद का बाप या बेहद का बाप? बेहद का बाप। लेकिन वो बेहद का बाप इस सृष्टि में प्रवृत्ति मार्ग बनाने आता है, निवृत्ति मार्ग को खंडित करने के लिए आता है, इसलिए आता है, है? प्रवृत्ति मार्ग की देवताओं की दुनिया बनाने आता है या निवृत्ति मार्ग के सन्यासियों की दुनिया बनाने आता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स जो अपने जीवन में प्रवृत्ति को कभी स्थायी नहीं रखते, एक के साथ प्रवृत्ति बनाएंगे, दूसरे के साथ बनाएंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे के साथ बनाएंगे, ये प्रवृत्ति बनाना हुआ या बिगाड़ना हुआ? बिगाड़ना हो गया। बाप तो आकर के नई दुनिया की स्थायी प्रवृत्ति बनाते हैं और एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की स्थायी प्रवृत्ति, जिसके साथ आकर के प्रवृत्ति बनाते हैं, बनाते हैं। त्रिकालदर्शी होने के कारण उस आत्मा को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ढूंढना उनके लिए सहज है या कठिन है? है? सहज है। क्यों? उनको आंखें तो है नहीं, कैसे पहचान लेते हैं? अरे त्रिकालदर्शी है, त्रिकालदर्शी होने से वो जान दे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कौन सी आत्मा हीरो पार्टधारी है? जिसमें मुझे प्रवेश करना है, जिस योनि रूपा माता को मैं अपनाता हूँ, जो गीता में लिखा है, मत योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता महत् ब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो, वही है जिसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूँ। जिसके लिए गीता में कहा है कि मैं जब आता हूँ तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूँ? सूर्य को ज्ञान देता हूँ। साकार सृष्टि में जैसे यादगार मात्र वो स्थूल सूर्य है, ऐसे ही कोई चैतन्य आत्मा है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली उसको ये टाइटल मिलता है क्या? क्या टाइटल? सूर्य। उससे जो भी वंशावली चलेगी क्या कही जाएगी? सूर्यवंशी। जैसे बाद में चंद्रवंशियों का नाम आता है, सूर्य सारे संसार को, सभी मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देता है, या कोई को देता है कोई को नहीं देता है? है, है? सभी को देता है। तो असल में जो ज्ञान सूर्य है शिव, परंतु वो निराकारी दुनिया में नाम है, आत्मा का ही नाम है। और जो मनुष्य आत्माएं हैं उन सब मनुष्य आत्माओं के शरीर का नाम होता है। उस शरीर के द्वारा जो काम करते हैं उस काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो सूर्य के तरह काम किया, टाइटलधारी सूर्य ने इस साकार सृष्टि के रंगमंच पर चारों युगों में पार्ट बजाया और अविनाशी पार्ट बजाया। कैसा पार्टधारी? ऑलराउंड अविनाशी पार्टधारी, जिसका गायन भारतवासियों में आज भी है। किस नाम से? कोई नामधारी मनुष्य आत्मा ऐसी है जिसका जन्म मरण नहीं गाया जाता? जन्मदाता नहीं गाया जाता, होता ही नहीं। उसकी मृत्यु भी कभी होती नहीं, महामृत्यु के समय भी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, वो सबको खा जाता है। सबको खा जाता है माने आत्माओं को नहीं खा जाता, आत्माओं के शरीर को खा जाता है। सबके शरीर खलास हो जाते, उसका शरीर खलास नहीं होता। जैसे प्रकृति के जो पांच तत्व हैं, नेचर के पांच एलिमेंट्स कभी खत्म नहीं होते, कोई न कोई रूप में बने रहते हैं। माना प्रकृति अनादि है, अनंत है, या उसका अंत हो जाता है, है? प्रकृति अनादि है, परंतु वो जड़ प्रकृति है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश कही जाने वाली पांचों तत्वों का संघात प्रकृति कही जाती है। परंतु जैसे गीता में आया, जड़ प्रकृति के जैसे पांच तत्व हैं, ऐसे ही चैतन्य प्रकृति भी है, परा प्रकृति, उसका भी संघात है। पांच तत्वों का संघात चैतन्य प्रकृति के पांच तत्वों का संघात, पंच देवता कहे जाते हैं। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, देवता चैतन्य होंगे या जड़ होंगे? तो उन पांचों चैतन्य तत्वों का जो एक संगठित रूप है, जैसे हर मनुष्य का शरीर पांच तत्वों का संगठित नमूना है, ऐसे ही जो पांच चैतन्य तत्व हैं, उनका एक ही बीज है, जिसमें पांचों तत्वों का संघात समाया हुआ है। अगर ये सच बात है तो उसका यादगार होगा या नहीं होगा? क्या है? अरे ये तो वही बात हो गई, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। ढाई हजार वर्ष से पूजा की, महिमा की, गायन किया, कीर्तन किया, फिर भी ये नहीं जान पाए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तम मन एक, ये दो चार आठ। वो कौन है जिसे एक की पूजा जन्म जन्मांतर करते रहे? भारत में यादगार अनगिनत मंदिर हैं, 2500 वर्ष से, और विदेशों में खुदाइयां हुई हैं। इतनी मूर्तियां और किसी देवता की नहीं मिली। कोई धर्म पिता की नहीं मिली। भगवान के रूप में माने जाने वाले कोई भगवान की नहीं मिली, न राम की मिली, न कृष्ण की मिली, न शंकर की मिली, न क्राइस्ट की मिली, न बौद्ध की मिली। जितनी मूर्तियां खुदाई में देश विदेश में, उसे एक की मिली है, अभी भी नहीं याद आया है, शिवलिंग। उस शिवलिंग में सात्विक स्वरूप द्वापर के आदि का दिखाया गया, क्योंकि हर युग चार अवस्थाओं से गुजरता है। द्वापर का आदि सात्विक था, उस सात्विक समय में उस ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की यादगार दिखाई गई है। क्या? सोमनाथ का मंदिर। पूजा करने वाला भी प्रसिद्ध है। कौन है? विक्रमादित्य। परंतु वो द्वैतवादी युग का विकारी युग का विकारी राजा था या निर्विकारी राजा था? है विकारी राजा था। जो भी विकारी राजाएं हुए हैं, विकारी होने के कारण वो अपने को पतित समझने लगे, थे ही पतित। पतित अकल, पतित बुद्धि में, मन बुद्धि आत्मा में आत्मविश्वास उतना नहीं रहता, इसलिए ब्रह्मा मुख से ही मुरली में बता दिया कि विकारी राजाएं पवित्र ब्राह्मणों को मत देने के लिए रखते थे, अपनी मत पर उन्हें विश्वास नहीं था। ब्राह्मण पवित्र होते हैं, इसलिए पवित्र ब्राह्मणों को मंत्री बनाने की प्रथा चली, मंत्रणा लेने के लिए। तो बताओ, राजा विक्रमादित्य को सोमनाथ मंदिर बनाने और वो लिंग मूर्ति बनाने की राय मत किसी ने दी होगी या नहीं दी होगी? कोई पवित्र ब्राह्मण ने ही दी होगी। मत देने वाला जो भी हो, अपन को भगवान समझता था क्या? है नहीं। भगवान को कोई राजा कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल कर सकता है? नहीं। तो जो मत देने वाला था वो भी पुजारी हुआ या पूजी हुआ? पुजारी हुआ। और कहते हैं कि वेद ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए, मुख से निकले, परंतु वेदों का जब नाम आता है तो कोई व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है। जैसे कि वेद तो प्राचीन माने ही जाते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे प्राचीन है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी वो ही नाम जोड़ा जाता है जो वेदों में नाम जोड़ा गया। क्या नाम है? व्यास, वेद व्यास। गीता के भी लास्ट अध्याय में वो नाम आया है, व्यास प्रसादात। व्यास की प्रसन्नता से हमें ये गीता ज्ञान मिला। और वो व्यास मनुष्य था, देवता था या भक्ति मार्ग में ऐसे ही व्यास भगवान नाम दे दिया है? क्या था? है दाढ़ी मूछे वाला था या क्लीन शेव देवता था, मनुष्य था? मनुष्य कहा ही जाता है मनन चिंतन करने वाला, मन का उपयोग करने वाला, मनु की औलाद मनुष्य। इसलिए शास्त्रीय मान्यता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म है, क्योंकि शास्त्रकारों ने मनुष्य आत्मा को 84 लाख योनियों में ढकेल दिया। 84 लाख का चक्कर लगाने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे नहीं है, वास्तव में इस दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं, वो सभी प्राणी जो भाव स्वभाव और कार्यशैली व्यक्त करते हैं, वो सारी कार्यशैली भाव स्वभाव इस मनुष्य सृष्टि के बीज में समाये हुए हैं। वो एक ही मनुष्य आत्मा है, सारी मनुष्य आत्माओं का बीज। जो 84 लाख योनियों का आचरण करता है, कोई न कोई जन्म में कहीं न कहीं बाकी सभी मनुष्य आत्माएं ऐसा नीचते नीचे व्यवहार, नीचते नीचे स्वभाव धारण ही नहीं कर सकते। क्योंकि वो एक ही आत्मा है, जो नीचे से नीचे पार्टी भी बजाती है और ऊंचे से ऊंचे पार्टी भी बजाती है। परमपिता शिव की मत पर प्रैक्टिकल जीवन में योगी बन करके योगीश्वर कही जाती है। जिसे योगीश्वर शंकर कहते हैं, योगीराज कृष्ण भगवान कहा जाता है। परंतु वो कृष्ण भगवान नहीं, वो तो सतयुग का पहला देवता है। महादेव भी नहीं, कृष्ण 16 कला संपूर्ण गाया हुआ है। 16 कला संपूर्ण भगवान बनाने वाला है या बनने वाला है? जो बनने वाला है, रचना है, उसको भगवान मान लिया। और सतयुग में डालते तो भी अच्छा था, क्योंकि सतयुग में शास्त्रों में भी 16 कला संपूर्ण सतयुग गाया हुआ है। घटती कला वाले युग में, 8 कला के युग में, उसमें भी द्वापर के अंतिम तमो प्रधान द्वापर में डाल दिया। और द्वापर में कृष्ण भगवान आया तो पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। अब बताओ, ऐसे भगवान में और इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं में क्या अंतर रह गया? वो धर्म पिताएं भी उतरती कला में जाने वाले, अपने फॉलोअर्स को भी उतरती कला में ले जाने वाले, दुनिया को भी उतरती कला में ले जाने वाले, और कृष्ण भगवान भी। क्या साबित होता है? खुद उतरती कला में जाने वाला साबित होता है तो अपनी रचना को भी उतरती कला में ले जाएगा। तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत वो नहीं कहा जा सकता, ऊंचे से ऊंचा भगवंत वो ही कहा जाएगा जो इस मनुष्य सृष्टि में ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी हैं, ऊंचे से ऊंचा महान पार्ट बजाने वाले धर्म पिता हैं, उन सब के बीच में ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी और ऑलराउंड पार्टधारी जिसको मुरली रूपी ब्रह्म महावाक्यों में नाम दिया है शिव बाबा। मुरली में जिसे हम मुरली कहते हैं ब्रह्म वाक्य कहते हैं, उस दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करने वाला कौन? शिव, और सदा शिव। उसके वाक्य सदैव सच्चे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सदैव कल्याणकारी हैं। उन वाक्यों में ये वाक्य है शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है और इस सृष्टि पर कोई चीज नहीं है जो सदा कायम हो। यही बात गीता में भी है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। माने जो सत्य है 100% उसका इस सृष्टि पर कभी अभाव नहीं हो सकता। वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड है, सदैव था सदैव रहेगा। क्योंकि वो एक ही है जो आत्माओं के बाप समान बनता है 100%। बाप का विरुद्ध है आत्माओं के बाप का, कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो टाइटल मिल जाता है, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का टाइटल क्या? आत्मा जिसे पुरुष कहा जाता है, पुरु माने शरीर रूपी पुरे, शमन शयन करने वाला, जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली आत्मा है वो ही पुरुष है और परम पुरुष है। प्रैक्टिकल में शरीर के साथ कार्य व्यवहार करते हुए, प्रैक्टिकल में परम पुरुष है। शिव को तो कार्य व्यवहार करने वाला अपना शरीर है ही नहीं, फिर भी आत्माओं के बीच वो परम पुरुष है, मनुष्य आत्माओं के बीच परम पुरुष नहीं है। तो जो मनुष्य आत्माओं के बीच प्रैक्टिकल कार्य व्यवहार में ऊंचे से ऊंचा पद लेने वाला परम पदधारी विष्णु है, विष्णु अर्थात नो विषयताल, लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन, विष्णु रूप, वो सारी मनुष्य सृष्टि के लिए परम पद है। और वो पद योग बल से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो योग बल संपूर्ण अर्थात 100% ज्ञानी बनने से ही प्राप्त हो सकता है। जितना ज्ञानी उतना बड़ा योगी, कम ज्ञानी तो कम योगी। शिव को योग लगाने वाला योगी कहेंगे, नहीं कहेंगे तो योगियों का शासन करता योगीश्वर भी नहीं कहा जा सकता। ये टाइटल ब्रह्मा के बड़े पुत्र को मिलता है। जो मानसी सृष्टि में गिना जाता है, योग बल में मन का उपयोग करके, मन को एकाग्र करके योगीश्वर का टाइटल लेता है, ज्ञानेश्वर का टाइटल लेता है। और ज्ञान योग को अलग नहीं कहा जा सकता। ज्ञान कहा जाता है व्याख्या सहित ज्ञान, वो ज्ञान नहीं जिसकी व्याख्या ही न की गई हो। जैसे वेद आज संसार में कोई वेदों को पढ़ता है, सुनता है, वेदवाणी को जीवन में धारण करता है, तो उसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों के संगम युग में शूटिंग होती है। ब्रह्मा मुख से जो गीता ज्ञान आता है वो ब्रह्मा मुख की वेदवाणी है। लेकिन वो वेदवाणी काठ की मुरली है, काई की मुरली है, काठ की मुरली। क्यों कहा? भक्ति मार्ग में कृष्ण भगवान को काठ की मुरली क्यों दे दी? क्योंकि उनके मुख से जो मुरली चलाई गई, वाणी चलाई गई, जिसे वेदवाणी कहा गया, उसके अर्थ को कोई नहीं जाना। और न जानने के कारण इस मनुष्य सृष्टि में कौन है मनुष्यों का पिता? वो शाश्वत रूप से नहीं पहचान पाया कोई। जो एक बार पहचान ले तो जन्म जन्मांतर ज्ञान के सार में टिक जाए। ज्योति बिंदु में टिक जाए, निरंतर योगी बन जाए। इसका मतलब वो योग लगाने वाला योगी कौन, उस गीता ज्ञान की व्याख्या करने वाला, व्याख्या सहित ज्ञान सुनाने वाला कौन, प्राइमरी स्कूल में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कवियों के गीत रटाए जाते हैं, तुलसीदास के, कबीरदास के, सूरदास के गीत कवित्व और दोहे रटते हैं, परंतु उसके गहरे अर्थ नहीं बताए जाते, वो समझ ही नहीं सकते बच्चा बुद्धि होने के कारण। फिर वही बेसिक ज्ञान के बच्चे जब परिपूर्ण बेसिक ज्ञान में सिद्धहस्त हो जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु जो बोला ब्रह्मवाणी में कि तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे, इसका मतलब बेसिकली ज्ञान की कट नहीं उतरती है बच्चों में, वो विकारों की कट नहीं उतरती है, जिसे देह भांग कहा जाता है। एक सेकंड के फाउंडेशन मात्र भी आत्मिक स्टेज में नहीं टिक पाते, ज्योति बिंदु स्वरूप में नहीं टिक पाते, और जो ज्योति बिंदु स्वरूप में टिकते हैं उनके लिए बोला कि कम से कम फाउंडेशन मात्र एक सेकंड देवान की कट उतर गई। तो जिन जिन बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों की बेसिकली कट उतरती जाती है वो डायरेक्ट बाप से, जो आत्माओं का बाप है परमपिता, उससे सुप्रीम टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ते हैं, परंतु आत्माओं का बाप शरीरधारी नहीं है, वो शरीर लेता है, अपना शरीर नहीं है, और जो शरीर लेता है मुकर्रर रूप से, अर्थात आज में ही वो ही शरीर रूपी आत्मा, मध्य में ही वो ही आत्मा और अंत में ही वही आत्मा बाप के रूप में पाठ बजाने वाली, ज्ञान का बीज बोने वाली वही आत्मा, सुप्रीम टीचर के रूप में पाठ बजाने वाली वही आत्मा, मन ज्ञान की व्याख्या करने वाली वही आत्मा और सदगुरु के रूप में अंतिम पाठ बजाने वाली वही आत्मा का शरीर मुकर्रर शरीर है। इसलिए बोला कि तुम बच्चों का बाप टीचर और सदगुरु एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो कौन है जो एक ही आत्मा बाप का पार्ट भी बजाती, प्रैक्टिकल में बजाती, टीचर के रूप में भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाती और सदगुरु के रूप में सदगति करने वाला सदगुरु का पार्ट भी बजाती, सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है, सदगति करने वाला है, सदगति शरीर के साथ गाई जाती है, शरीर में रहते रहते सुख भोगे दुख न भोगे, उसको कहते हैं सदगति। तो ऐसा सदगुरु जो पहले स्वयं प्रैक्टिकल में ऐसा पार्ट बजा कर दिखाए, कैसा पार्ट शरीर में रहे और शरीर में रहते रहते सुख भोगे दुख का अनुभव न करे, इसलिए बोला शरीर बल कैसा भी हो जाए, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। अगर पावरफुल आत्मा है तो कैसे भी लुंजुम पुंजुम रथधारी जो आत्मा कही जाती है पार्ट बजा के रहेगी, कैसा लुंजम पुंजम रथ है, जिस रथ को चलाने के लिए सैकड़ों आत्माएं मददगार बनती हैं, सहयोगी बनती हैं प्रैक्टिकल में। कोई यादगार है, जगन्नाथ मंदिर का जो रथ है वो सैकड़ों व्यक्ति चलाते हैं, सहयोग दे करके चलाते हैं, सबके लिए भारी पड़ जाता है, इसलिए ब्रह्मवाक्य मुरली में बोला है, याद है? राम सीता के लिए अब याद है क्या बोला? है राम सीता को खादी का राजा रानी कहेंगे। कैसा वस्त्र है? शरीर रूपी वस्त्र खादी से मेल खाता है। खादी सतयुग त्रेता रूपी ठंडे मौसम में, ठंडक देने वाले मौसम में गर्मी महसूस कराती है और दिमाग को गर्म करने वाले मौसम द्वापर कलयुग में ठंडा अनुभव कराती है। कौन से मौसम में ज्यादा तकलीफ देती है? ज्ञान बरसात के टाइम पर बहुत दुख देती है। 84 जन्मों का हिसाब किताब एक ही जन्म में उसे एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा पूरा कर लेती, क्योंकि ज्ञान बरसात की यादगार संगम युग में जब परमपिता आकर के ज्ञान की बरसात करते हैं तो वो आत्माएं ज्ञान के जल में ऐसी भारी भीग जाती है कि सबको तकलीफ देती है। देवान से चिपक जाती है कि दूर हो जाती है, है? खादी बरसात में शरीर से चिपक जाती है, अटैच हो जाती है या डिटैच रहती है? और जल्दी गंदी होती है या गंदे होने में टाइम लगता है? है? जल्दी गंदी होती है। अभी अभी ज्ञान मुरली की बरसात, स्नान किया और अभी अभी गंदी, क्यों? क्योंकि जगन्नाथ के सदा साथ रहने वाली दूसरी मनुष्य आत्मा कौन है? बलराम। रामायण में जिसे लक्ष्मण के रूप में दिखाया है, किसका अवतार? शेष नाग कहो वासुकी नाग कहो, साथ ही रहने वाला है। नाग क्यों कहा? कोई कारण होगा कि नहीं? कौन सा जानवर है? मनुष्य रूप में भी है। जो नाग के रूप में महाकामी देखा जाता है, है? कोई जानवर नहीं। अरे वासुकी नाग नागों का राजा है ना। महाकामी। और बाप कहते हैं तुम बच्चों को क्या बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और वो क्या बन करके रहता है, है क्या बनकर रहता है, है सारे संगम युग के पुरुषार्थी जीवन में इच्छाधारी नाग बनकर रहता है कि इच्छा मात्रम अविद्या बनकर के रहता है, है क्या बनकर रहता है, इच्छाधारी नाग बनकर के रहता है। जिसे कामना कहते हैं वो ही इच्छा, काम विकार की इच्छा ही सर्वोपरि इच्छा है प्राणियों में। उस इच्छा को वो त्याग ही नहीं पाता, मन बुद्धि से। इसलिए संगम युग में शरीर रहते रहते, साकार शरीर रहते रहते, वो शरीर की इंद्रियों से परे का सुख, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, महसूस ही नहीं कर सकता। महसूस कर सका है, 69 तक महसूस कर सका अतीन्द्रिय सुख, है नहीं कर सका। और शरीर छोड़ने के बाद जो सूक्ष्म शरीर मिलता है, उस शरीर में विकारी शक्ति और ही बढ़ जाती है या घट जाती है, है और ही बढ़ जाती है। तो दिखाया जाता है राम भगवान के साथ भी और कृष्ण भगवान के साथ भी बलराम शरीर के बल के रूप में दिखाया जाता। कृष्ण भगवान के मुकाबले लंबा चौड़ा दिखाया जाता या छोटा दिखाया जाता है, लंबा चौड़ा दिखाया जाता। जैसे रामलीला में राम को छोटा दिखाते और रावण को, उसके परिवार को बड़ा बड़ा चित्र बनाकर दिखाते। शंकर भगवान के रूप में कहां दिखाते है, अरे गले में कौन लिपटा हुआ है, गले पर गया। छूटता ही नहीं, ऐसे जकड़ के रखा हुआ है। ऐसे जकड़ के रखा हुआ है कि जिसको जकड़ा है किसको जकड़ा है, है शंकर को जकड़ा है, वो शंकर वाली आत्मा विकारी वृत्ति को छोड़ ही नहीं पाती। विषपाई वृत्ति को छोड़ देती, छोड़ती ही नहीं। और चंद्रमा के रूप में भी दिखाते हैं तो संपूर्ण चंद्रमा दिखाते हैं या अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं, अर्धचंद्र के रूप में दिखाते हैं, माने वो संपूर्ण आत्मा नहीं है। तब तक गले को जकड़ के रखती है, जब संपूर्ण चंद्रमा बनता है तो जकड़ के रखेगी, नहीं रखती है। इसलिए यादगार मंदिरों में जहां शिवलिंग होता है वो लिंग के आसपास संपूर्णता की यादगार में वो सर्प का बंधन नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि वो ही आत्मा जिसको बंधन डाला हुआ था वो आत्मा परमपिता शिव का साथी, क्या नाम दिया जाता है परमपिता के साथ? नहीं, परमपिता परमात्मा कहा जाता है। कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता। जैसे शिव के साथ शंकर जुड़ा हुआ है और कोई भी देवात्मा मनुष्य आत्मा राक्षसी आत्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ एकमात्र किसका नाम जोड़ा जाता? शंकर का नाम जोड़ा जाता। परंतु भक्ति मार्ग वालों ने जिस शंकर को शिव समझ लिया उनकी बुद्धि में ये नहीं आया कि शंकर सम्मिलित पार्टी की यादगार है, तीन आत्माओं के संकरण की यादगार है। अपूर्ण पुरुषार्थी की यादगार है या संपन्न योगी की यादगार है? है संपन्न योगी की यादगार है, तो याद में क्यों बैठा हुआ है? याद तो एक ईश्वर का सब्जेक्ट है पढ़ाई का, उस सब्जेक्ट पास कर लिया तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने की प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने की जरूरत है, है? जो शिव है शिव को योग लगाने की जरूरत है नहीं, तो वो तो शिव समान शिव ही बन गया। इसलिए सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ है, उस साकार की आत्मा जड़ी हुई है, वो हीरो पार्ट बजाने वाला हीरा है। शिव हीरो पार्टदारी नहीं है और शिव परमपिता स्वयं बताते हैं कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा और लिंग दिखाया गया वो कौन से आत्मा रूपी साकार शरीर और उस साकार शरीर में कौन सी आत्मा की यादगार है? प्रजापिता पतित का नाम है, है? हाँ, जो संपूर्ण 100% निराकारी स्टेज धारण करने वाला बनता है पहले पहले, वो ही मुसलमानों में आज तक भी गाया जाता है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने अव्वल दीन माने धर्म की स्थापना की, वो ही है अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा, उसके मुकाबले और कोई भी ऊंचे से ऊंचा नहीं है। वो इस दुनिया की बात है, ये दुनिया 500-700 करोड़ मनुष्य से बनती है, वो देवताओं में भी ऊंचा है, मनन चिंतन मंथन करने वाले शास्त्रों की व्याख्या करने वाले मनुष्यों में ऋषियों के बीच भी ऊंचा है और राक्षसी कर्म करने वाले राक्षसों में भी सबसे जास्ती मान्यता प्राप्त है या नहीं है? एक ही देवता है जिसकी मान्यता देवताओं में भी है और राक्षसी संस्कृति में भी है, मनुष्यों में भी है। बाकी विष्णु देवता देवताओं में मान्य है, मनुष्यों में मान्य है, परंतु राक्षसी संस्कृत में उसे पक्षपाती कहा जाता है। सुखदाइयों के लिए पक्षपाती है, बिच्छू टिंडन जैसी आत्माएं, सर्प जैसी आत्माएं जिनके स्वभाव संस्कार में ऐसा स्वभाव का पार्ट भरा हुआ है, वो अपने स्वभाव से मजबूर हैं, ड्रामा में उनका जन्म जन्मांतर का पार्ट ही ऐसा भरा हुआ है। जिस अविनाशी पार्ट की बात को वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कभी नहीं भूलता, इसलिए किसी के गुणों को किसी के अवगुणों को नहीं देखता, गुण और अवगुण देहधारी में होते हैं, प्रकृति के 5 तत्व के पुतला धारण करने वाले में होते हैं या सिर्फ आत्मा में होते हैं, तो वो आत्माओं का बाप है। और आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि में प्राणी मात्र में आत्माएं हैं, हर प्राणी मात्र आत्मा इस रंगमंच पर पार्ट धारी है, और सबके 5000 वर्ष का पाठ ड्रामा में प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक रूप में भरा हुआ है। तो किसके गुण देखे जाएं, किसके अवगुण देखे जाएं? किसका पक्षपात किया जाए? किया जाए या सिर्फ आत्मिक रूप में देखा जाए? साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलस्य, आत्मा जब संपूर्ण है तो प्रकृति के तीन गुणों से रहित अर्थात निर्गुण है केवल। यही बात ब्रह्म वाक्य मुरली में बोली है। भगवान तुम बच्चों के आदिकाल को देखता है, आदिकाल है संगम युग का स्वर्णिम समय। वास्तव में सृष्टि का पहला पत्ता जन्म लेता है वो भी असली आदिकाल नहीं है, क्योंकि कृष्ण रूपी जो बच्चा है वो भी उतरती कला में जाता है या चढ़ती कला में जाता है? कलाएं दिन ब दिन उतरती जाती है या चढ़ती जाती है? उतरती जाती है। वो ड्रामा में नूंद है कि प्रकृति का जो भी रूप देखने में आता है वो सभी रूप सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो की चार अवस्थाओं से उतरता जरूर है। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है तो कोई बताए। जो चार अवस्थाओं से कभी नीचे नहीं उतरती, मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी संगम युग में नीचे उतरता है। या नहीं उतरता? जैसा बाप वैसे ही बच्चे होंगे। वो प्राणी मात्र का बाप है जो प्राण धारण करते हैं, आत्माओं का भी बाप है और पंचभूतों का भी बाप है। पंचभूतों का बाप लिंग रूप में दिखाया गया है, बड़े रूप में दिखाया है, आदि में भक्ति मार्ग में उसकी पूजा स्वर्णलिंग के रूप में होती थी, मध्य में रजत लिंग ताम्र लिंग के रूप में हुई, और जब पूरा टोटल चौथी अवस्था में तमो प्रधान बनता है तो लौह लिंग पत्थर लिंग बन जाता है। चैतन्य होता है या जड़ होता है? है जड़ होता है। वो स्वर्ण लिंग जड़ था, रजत लिंग में जिसकी पूजा करते वो जड़ था, ताम्र लिंग के रूप में जिसकी पूजा करते थे वो जड़ था, पत्थर के लिंग के रूप में जिसकी पूजा करते वो पत्थर था या आत्मा थी, लेकिन अब पत्थरीली आत्मा थी। कोई न कोई बात में कोई न कोई ईश्वरीय ज्ञान के समझने में वो पत्थर बुद्धि अंत तक रहता है। क्यों? क्योंकि जड़ जंगम सबका बाप है, यह सिर्फ जंगम अर्थात चैतन्य का बाप है, है दोनों का बाप है। जो गीता में बोला अव्यक्त मूर्तिना, ये सारा संसार उस लिंग रूप अव्यक्त मूर्ति से बाहर आता है और महामृत्यु के समय उसी में समा जाता है, जिसके लिए परमपिता शिव का महावाक्य है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। किसने बोला है? किसने? शिव बाप ने बोला, शिव बाबा शरीरधारी ने बोला, उसको मन है, शिव बाप को तो मन है ही नहीं। तो वो जब संपन्न बनता है उस समय की यादगार है कि सारी मनुष्य शक्ति प्राणी मात्र उसी याद में शरीर छोड़ते हैं, साकार याद में या निराकार याद में, कौन सी याद सहज है? है साकार याद सहज है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का साथ रहा है मनुष्य सृष्टि का, इसलिए सहज है। जो बेसिक ब्राह्मण है, एडवांस के ब्राह्मण है, उन्हें डायरेक्शन मिला हुआ है अमृत बेला याद करो, तो निराकार को कितनी देर याद करके ठहरते हैं, फिर कहाँ चले जाते बुद्धि से? है कितने साल हो गए? ये प्रैक्टिस करते करते निराकार को याद करते करते कितने साल हो गए? हाँ 80 साल होने आए और अभी तक भी कोई छाती ठोक कर नहीं कहता। एडवांस ब्राह्मण भी नहीं कहता कि मैं 10 मिनट 5 मिनट निराकारी स्टेज में रहता हूँ, निसंकल्प स्टेज में रहता हूँ। एक शिव बाप, दूसरा न कोई। और ये बताया भी नहीं, बोला तो यही है एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो जब बाबा शब्द मिला हुआ है जो बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है वो ग्रैंडफादर का संबंध निराकार ज्योति बिंदु का है या जब वो साकार में आता है तब बनता है। निराकार का संबंध तो सिर्फ बाप और बच्चों का है, बच्चियों का भी नहीं, दूसरा कोई संबंध नहीं। जब साकार में आता है तो बाबा दादी माँ बाप ये ढेर संबंध बनते हैं। और प्रैक्टिकल में हम बच्चे इन संबंधों को निभाते भी हैं। तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस स्थिति में दुनिया की हर आत्मा को स्मृति में छप जाएगा क्या एक शिव बाबा। चैतन्य आत्मा या मुर्दा शरीर याद रहेगा है, चैतन्य आत्मा याद रहे। जो झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ नग्न रूप दिखाया है वो शरीर रूपी नग्न रूप लिंग है, पांच तत्वों का पुतला, इंद्रियां हैं, लेकिन ऐसी मन बुद्धि की स्टेज है कि इंद्रियां होते हुए भी मन बुद्धि से उन इंद्रियों को, उन इंद्रियों के रस को याद भी नहीं करता है। ऐसी स्टेज को लिंग के रूप में दिखाया है कि हाथ पांव नाक आंख कान जैसे उस लिंग में है ही नहीं। उस लिंग में अगर याद है, उस लिंग रूप साकार शरीर को अगर याद है तो क्या याद है, हैं? जो उस लिंग में प्रकाशित रूप में दिखाया जाता है क्या है, बिंदी है। सोमनाथ मंदिर का वो हीरा है, वो सुप्रीम सोल शिव की यादगार नहीं है, परंतु सुप्रीम सोल शिव ने जो रास्ता बताया है हर मनुष्य आत्मा को उस निराकारी स्टेज में टिकने के लिए, उस निराकारी स्टेज का संपन्न रूप का यादगार है, संपूर्ण योगी का यादगार है। शिव सुप्रीम सोल उसको योगी बनने की दरकार है, किसी से योग लगाता है उसकी बुद्धि का अटैचमेंट कोई के साथ होता है नहीं होता। हम आत्माओं की बुद्धि का अटैचमेंट महामृत्यु के समय एक के साथ होना है, नंबर वार। ये नंबर वार मालाएं बन जाती हैं। अव्वल नंबर माला रूपी संगठन आठ, द्वयम नंबर माला रूपी संगठन 108 राजाएं, फिर ब्रह्मा की हजार भुजाओं रूपी संगठन, फिर जन्म जन्मांतर राज परिवार में रह करके राज परिवार के अंदर का सुख भोगने वाली आत्माएं, उसके बाद फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा 1,00,000 आत्माएं, फिर नंबर वार सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा, इस तरह 4,50,000 मनुष्य आत्माएं। ये है ईश्वर साक्षात के द्वारा बनाया हुआ संगठन, जिसे कहते हैं आदि सनातन देवी देवताओं का संगठन। आदि सनातन धर्म का संगठन, धारणाओं का संगठन। ये धारणाएं सिवाय उस ऊंचे ते ऊंचे भगवंत, जिसे अल्लाह अव्वल दीन धर्म पिता कहा जाता है मुसलमानों में, और हेवनली गॉड फादर कहा जाता है क्रिश्चियंस में, परंतु वो क्रिश्चियंस जो भारतवासी थे सतयुग त्रेता में, फिर द्वैतवादी युग आने से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियंस भी बन गए, वो क्रिश्चियंस इस बात को समझते हैं कि वो हेवनली गॉड फादर, हेवन का रचयिता जो कहा जाता है, वो रचयिता साकार होता है या सिर्फ निराकार होता है, बाकी जो क्राइस्ट को ही अपना बाप मानते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, और कोई को अपना बाप नहीं मानते, वो दूसरे धर्म ग्रंथों को, दूसरे धर्म को कभी फॉलो ही नहीं करते, वो अपने धर्म के बड़े पक्के होते हैं। इसलिए दूसरे धर्म के पक्की आत्माएं वो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, ये सिर्फ मात्र देश भारत है जहां की आत्माएं भारत के बच्चे हैं। बाबा ने ज्ञान की रोशनी रत माने लगा रहने वाला, जो ज्ञान की रोशनी में सदा लगा रहने वाला है उस ज्ञानेश्वर के बच्चे हैं, और वो ज्ञान सिर्फ रटंती ज्ञान नहीं है, सुनने सुनाने का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान व्याख्या सहित समझने और समझाने का ज्ञान है, जो व्याख्या मनन चिंतन मंथन से आती है, सागर मंथन से अमृत निकलता है। इसलिए मुरली में बोला, अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों ऐसे बोला है? क्योंकि अमृत मंथन से निकलता है। जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे, उन ईश्वरीय महावाक्यों का मंथन ही नहीं हुआ, फिर संसार रूपी जंगल में से एक बबर शेर, जिसे अंग्रेजी में लायन कहा जाता है, बुद्धि का कमजोर लेकिन ताकत में सबसे ज्यादा, जब तक वो जंगल का राजा रहता है तब तक कोई दूसरा राजा जंगल में नहीं होता, कोई भी संसार की मनुष्य आत्मा उनका मुकाबला ज्ञान में आमने सामने करके नहीं कर सकी। जंगल के एक शेर जब चला जाता है तो दूसरा शेर आता है, वो दूसरे शेर को भारत में टाइगर के रूप में राष्ट्रीय पशु के रूप में माना जाता है। क्यों? शेर को छोड़ करके, बबर शेर को छोड़ करके, टाइगर को, बाघ को क्यों मान लिया? क्यों मान्यता दे दी? है? हाँ, क्योंकि शरीर की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी बुद्धि की वैल्यू है। बुद्धिमान बच्चे बुद्धिमान बाप से जन्म लेते हैं और देहंकारी किससे जन्म लेते हैं? देहंकारी धर्म पिताओं से जन्म लेते हैं। तो बताओ, देहंकारी धर्म पिताओं में सबसे बड़ा देहंकारी कौन हुआ? है दादा लेखराज ब्रह्मा, जिसकी गोद में सभी धर्म पलते हैं, चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि सभी पलते हैं। और सब दूसरे धर्मों से कन्वर्ट प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने से उनकी प्रजा बन जाते हैं। एक सूर्यवंशी की आत्माएं हैं जो सस्य रूपी मनुष्य वृक्ष में जो तना नीचे से सीधा ऊपर जाता है, वो आत्माएं कभी भी दाई ओर की डालियों में कन्वर्ट नहीं होती, भारतीय धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, बाई ओर के विदेशी धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होती। वो आत्माएं, उनको बाबा ने बोला है उद्धार मूर्त, उत्त माने ऊपर, हर माने हरण करने वाली, ऊपर की ओर सारे संसार को हरण करके ले जाने वाली आत्माएं हैं। सहज सहज माने तो अच्छा, नहीं मानेंगे है तो क्या करती है? क्या करती है? हैं? हरण करके ले जाती है। जैसे आज की दुनिया में ढेर सारे धर्म हैं, उन धर्मों में से ढेर सारी कन्याएं माँ बाप की परवाह भी नहीं करती, माँ बाप के संरक्षण में भी नहीं रहती, कोई दूसरा ही उनको हरण करके ले जाता है। तो जिनको अपहृत किया जाता है वो माताएं हुई या पिता समान हुए, क्या हुई है? माताएं हुई। ऐसी माताएं भारत में है जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन और उनके सहयोगी धर्मों में अपहृत होकर के ले जाई गई। जो आया कानों से सुना सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान, प्रभावित हो गई। और प्रभावित माना प्रजा, उन धर्मों की वो प्रजा बन जाती है, अब्बल नंबर की प्रजा नहीं। क्या जैसे भारत में परंपरा है, भारतवासी एक स्त्री चली जाती है, शरीर छोड़ देती है, तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेते हैं, दूसरी गई तीसरी लेते हैं, चार चार बार भी शादियां कर लेते हैं। क्योंकि भारत में ही ऐसे कम कुली कुरी के ब्राह्मण गाये हुए हैं। जो कम कुरी के ब्राह्मण कमजोर आचरण करने वाले होते हैं या संपन्न आचरण करने वाले सूर्यवंशी होते हैं, कमजोर आत्माएं हैं, नंबरवार नौ ऋषि हैं, उन नौ ऋषियों से नौ गोत्र चले जो नौ कुरी के ब्राह्मण कहे जाते हैं। दुनिया में नौ ही धर्म हैं, जिन धर्मों में भारतवासी कन्वर्ट होते रहे। लेकिन शिव बाप के बच्चे पुरुष रूप में हैं या स्त्री रूप में हैं? जन्म जन्मांतर के उन आत्माओं में कैसे संस्कार हैं? स्त्री के स्वभाव संस्कार हैं या पुरुष स्वभाव संस्कार हैं? हैं? पुरुष स्वभाव संस्कार हैं, इसलिए रुद्रमाला के मणके हैं, रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, किसी के प्रभाव में आने वाले नहीं है, प्रभावित करने वाले हैं। प्रभावित होने वालों को प्रजा कहा जाता है। भारत में लक्ष्मी जैसा पाठ बजाने वाली भी आत्माएं भी हैं। कैसा स्वभाव संस्कार है? वरों शंभु नतु रहो कुंवारी, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। संगम युग में ऐसी प्रैक्टिकल में शूटिंग करती है तो ब्रॉड ड्रामा में भी कैसी शूटिंग होगी? कैसा ब्रॉड ड्रामा होगा? है वैसा ही होगा। और संगम युग में जिनकी रीति भीति बदल जाती है, एक शिव बाबा नहीं दूसरी दूसरी आत्माओं को भी, प्रभावशाली आत्मा जिन्हें समझते हैं उनको भी बाप अथवा पति बना लेते हैं। जो मुरली में बोला है एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अगर अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और यहां व्यभिचारी ज्ञान सुना तो द्वापर युग से द्वैतवादी ज्ञान सुनाने वाले ढेर धर्म पिताएं आते रहते हैं और कन्वर्ट करके ले जाते हैं, उनका ज्ञान सुनकर के ही व्यभिचारी बनेंगे। वो अपने धर्मों में ले जाएंगे और व्यभिचारी बनाएंगे। इसलिए बोला ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है बड़ा प्रभावशाली युग है। हर आत्मा की मुट्ठी में भगवान बाप आकर के उसकी तकदीर देते हैं। तकदीर देते हैं या तकदीर बनाने की युक्ति देते हैं? युक्ति देते हैं। फिर किसे कहा जाए कि तकदीर बनाने वाला है? है हाँ, माँ बाप ही बच्चों की तकदीर बनाने वाले होते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में क्या होता है, बच्चों में जो संस्कार आते हैं वो प्रबल रूप से संस्कार पूर्व जन्म से ही आते हैं या माता पिता के द्वारा भी डाले जाते हैं? हैं? माता पिता के भी द्वारा डाले जाते हैं। तो बताओ संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में माता पिता कौन हुए? प्रैक्टिकल में सिर्फ रास्ता बताने वाले नहीं, प्रैक्टिकल जीवन बनाने वाले। कौन हुए? लक्ष्मी नारायण को ही कहेंगे। वो पहले स्वयं बनते हैं, मुट्ठी में तकदीर लेते हैं कि तकदीर बनाने का रास्ता बुद्ध रूपी हथेली में लेते हैं। उनको कोई देता है, देने वाला है प्रैक्टिकल में, या स्वयं बनाते हैं पुरुषार्थ करके? पुरुषार्थ का मतलब ही है पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। किसके लिए करना है? अगर इस मनुष्य जीवन में कुछ करना है तो किसके लिए करना है? देह के लिए, देह की परवरिश के लिए, या आत्मा के जन्म जन्मांतर की परवरिश के लिए? देह का कनेक्शन इसे एक जन्म से है और आत्मा का कनेक्शन जन्म जन्मांतर से है, तो किसकी परवरिश में? तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत भी लगा करके चलना है। आत्मा के कल्याण के लिए सब कुछ करना है, देह के कल्याण के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्माओं का भी बाप आया हुआ है। क्या? आत्माओं का भी बाप आया हुआ है और मनुष्य आत्माओं का भी बाप आया हुआ है। प्रैक्टिकल में आया हुआ है या सिर्फ कहने मात्र आया हुआ है? प्रैक्टिकल में आया हुआ है, जो कहता है मेरे बच्चे सर्विसेबल बच्चे, जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा, बाप दूसरा धंधा करता है। मान लो बाप डॉक्टर है, वैद्य है, और बच्चा बाल काटने का धंधा करने लगे तो लोग क्या कहेंगे? है बाप का बच्चा है क्या? तो यहां भी ऐसे ही है, बाप है कौन सा धंधा करने वाला? ब्राह्मण बाप। सिर्फ ब्राह्मण बाप नहीं, ब्राह्मणों की चोटी क्या, जब सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी तब जलमयी में वो बाप नहीं डूबेगा दुनिया के पहाड़ भी डूब जाएंगे, ऊंचे से ऊंचा पहाड़ कौन सा है? हिमालय, हिम का आलय, बर्फ का घर। चैतन्य में बर्फ का घर कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा की आत्मा। इतना ज्ञान सुनती है सुनाती है लेकिन वो आत्मा बर्फ के घर जहां है, जहां ज्ञान जल जाम हो करके रहता है, ज्ञान जल पत्थर बन जाता है, बहता ही नहीं, बहता है नहीं बहता, वहां का वासी गाया हुआ है हिमवान। पार्वती का पिता वो हिमवान बुद्धि से बर्फ का घर है। इस दुनिया में सबसे ऊंची स्टेज वाला पहाड़ है, क्या नाम दिया? हिमालय। लेकिन उससे भी ज्यादा ऊंची स्टेज किसी और की है नहीं है? हिमालय पहाड़ में कोई और है जो हिमालय पहाड़ से भी परे की स्टेज में है। क्या है? है एवरेस्ट। क्या? जैसे कहते हैं एवर प्योर, ऐसे कैसा है? एवरेस्ट। किस बात में एवरेस्ट? भारतीय सभ्यता में एवरेस्ट कि पाश्चात्य सभ्यता में एवरेस्ट है? भारतीय सभ्यता में एवरेस्ट। जो भी उसके कुल में है अव्वल नंबर नई दुनिया की पालना करने वाले नेपाली, वो भी पाश्चात्य सभ्यता में डूबने लग पड़ते हैं। खान पान पाश्चात्य सभ्यता का, पहनावा उड़ावा पाश्चात्य सभ्यता का, मकान दुकान भी पाश्चात्य सभ्यता की, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है पाश्चात्य सभ्यता का। लेकिन उनके बीच वो एक ही आत्मा है, जो न विदेशियों से प्रभावित नहीं होती, सारी दुनिया जलमयी की बाढ़ में डूब जाती है। बाढ़ में क्या होता है? बाढ़ में देह अभिमान की मिट्टी सारे जल में फैल जाती है कि नहीं है? फैल जाती है। जब देह अभिमान की मिट्टी सारे जल में रम जाती है तो सभी जीव जंतु देह अभिमान की मिट्टी में अच्छे से डूबने लग पड़ते हैं, डूब भी जाते हैं। परंतु एक आत्मा एवरेस्ट चोटी जो कभी भी डूबती नहीं, जलमयी में जिसके लिए बाबा ने बोला, तुम बच्चे जब विकारों की दलदल में पूरा ही डूब जाते हो एड़ी से लेकर के सर तक, तब चोटी बचती है। उस ब्राह्मण चोटी को पकड़ के मैं खींचता हूं। तो नंबर बार सर में विराजमान विराट पुरुष की देव आत्माएं निकलती हैं, भुजाओं के समकक्ष रहने वाली क्षत्रिय आत्माएं निकलती हैं त्रेता युग की, उसके बाद नाभि से नीचे जो द्वैतवाद आ जाता है, एक टांग दाई ओर एक टांग बाई ओर दो प्रकार की चलन हो जाती है। जिन्हें बाम मार्गी कहा जाता है, विदेशी बाएं हाथ से कचरा साफ करने का काम किया जाता है और दाएं हाथ से दान धर्म आदि अच्छा कार्य किया जाता है। तो जो पवित्रता को पालन करने वाले धर्म है, बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज, वो अच्छाई को महत्व देने वाले धर्म, वो दाई भुजा है और दाई टांग है, अच्छे रास्ते पर चलने वाली आत्मा है। और बाकी बाम मार्ग में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। और घुटने से लेके नीचे तक शूद्र, जो सारे शरीर का भार बहन करते हैं, शारीरिक सेवा करते हैं, ब्राह्मण मन बुद्धि की सेवा करते हैं और शूद्र क्या करते हैं? शारीरिक सेवा करते हैं। जैसे मजदूर और जैसे इंजीनियर, ज्यादा तनख्वाह किसको मिलती है? है क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई पढ़ी और मजदूरों को कम पैसा मिलता है, बहुत कम, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जो अच्छे से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो ब्राह्मण कहे जाते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो शूद्र कहे जाते हैं। इसलिए गीता में कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सष्टम सष्टिम, चातुर्वर्ण्यम मया सष्टम गुण कर्म विभाग से, स्वभाव के आधार पर, गुणों के आधार पर, उनके किए हुई कर्मेंद्रियों के कर्मों के आधार पर, क्योंकि कर्मेंद्रियां भी तो व्यभिचारी कर्म करती हैं। अब व्यभिचारी होकर ब्राह्मण जन्म में कोई कोई रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। तो उस आधार पर चार वर्णों की रचना इस पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान के द्वारा होती है। इसलिए बोला कि मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, अच्छे से अच्छा जन्म बना लो, चाहे बुरे से बुरा जन्म बना लो, तो वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत पतित पावन है, पतितों को पावन मनाने वाला है। कैसे? तरीका क्या है? ज्ञान लेने से पतित से पावन बन जाते हैं? है? नहीं बनते हैं। इसलिए ऐसे कह करके कोई नहीं बुलाते, हे भगवान आओ आकर के हमको ज्ञान सुनाओ। कैसे बुलाते हैं? हे पतित पावन आओ। और पतित पावन के साथ नाम भी जुड़े हुए हैं। कौन? पतित पावन सीताराम, ये भी बोला हुआ है मुरली में। जो पतित से पावन बनते हैं वो ही मुझे बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं। और जो पतित से पावन बनते नहीं वो मुझे बुलाते भी नहीं। और यहां शूटिंग होती है क्या? मन बुद्धि से, वाचा से, कर्मेंद्रियों के प्रयत्न से, अर्थात कर्मेंद्रियों से सहयोग देकर बार बार बुलाने की चेष्टा करते हैं, संगम युग में शूटिंग भी करते हैं। वो कौन है? जो पतित पावन बाप को मानने वाले हैं, और जो नहीं बुलाते हैं वो पतित पावन राम बाप को मानते भी नहीं, पहचान ही नहीं पाते, और दूसरों को अपना बाप बना लेते, उनके बच्चे बन जाते। उनमें निश्चय बुद्धि बन जाते कि यही हमारे बाप हैं, माता पिता हैं। तो बोला बरोबर ऊंचे ते ऊंचा भगवंत क्या है? है पतित पावन है, पतितों को पावन मनाने वाला है। कौन है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? सदाशिव निराकार ज्योति बिंदु, जिस बिंदु की याद करने से पति से पावन बनते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिता हैं, जो निराकार को याद करने के आदि हैं, जन्म जन्मांतर उनके फॉलोअर्स भी वो पति से पावन देवता बनते हैं। क्यों नहीं बनते है? क्योंकि वो पतित पावन जो है प्रैक्टिकल में, उस पतित पावन को जानते ही नहीं कि वो कैसे इस सृष्टि पर साकार मुकर्रर रथ में आकर के इंद्रियों के द्वारा संग का रंग लगा करके पतितों को पावन बनाता है। जैसे उन देहधारी धर्म पिताओं ने, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ने इस शक्ति पर आकर के पावन देवात्माओं को संग का रंग लगा करके कन्वर्ट करके क्या बना दिया? पावन देवता बना दिया या राक्षस राक्षसी का कर्म करने वाला बना दिया? है राक्षस राक्षसी का कर्म करने वाला बना दिया। जो बोला इस दुनिया के सभी मनुष्य मात्र पुरुष क्या बन जाते हैं? है दुर्योधन, दुष्ट युद्ध करने वाले बन जाते हैं। दुष्ट युद्ध माने क्या है? किसी की इच्छा हो या न हो, क्या किसी की इच्छा हो या न हो, हमें सुख लेना है, हमको सुख देना ही देना है। नहीं देंगे तो हम देहंकार में आकर के दुष्ट युद्ध करेंगे। काहे से? देह की इंद्रियों से दुष्ट युद्ध करेंगे, वाचा से पिटाई करते रहेंगे, वाइब्रेशन से पिटाई करते रहेंगे। नहीं मानेंगे तो इंद्रियों से भी पिटाई करते रहेंगे। और इंद्रियों में भी जो सबसे पावरफुल, ज्यादा से ज्यादा पतित बनाने वाली इंद्रिय है, उस इंद्रिय का भी प्रयोग करके जबरदस्ती पतित बनाएंगे। किसको? किसको है? अबलाओं को। उनको अबला कौन बनाता है? है ये देहधारी धर्मगुरु द्वैतवादी द्वापर युग से जो आए, उन्होंने क्या बनाया है? अबला बनाया। और वो सन्यासी सभी है प्रवृत्ति को न मानने वाले, प्रवृत्ति को न ठहराने वाले, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, सब सन्यासी हैं, प्रवृत्ति को तोड़ने वाले हैं। उनमें सन्यास शर्म सबसे आगे है। जो नारी को क्या बोलता है? नारी नरक का द्वार है। अरे नारी नरक का द्वार है और तुम अपने को शिवो अहम कहते हो, शिव माना क्या है, कल्याणकारी बताते हो, तो नारी नरक का द्वार उसको उसके प्रति कल्याण की भावना होनी चाहिए, कल्याण की वाचा होनी चाहिए या विरोधी वाचा विरोधी वातावरण बनाना चाहिए है? तो तुम क्यों कहते हो अपन को भगवान? भगवान तो इस सृष्टि को झूठ खंड से, नरक से सच खंड स्वर्ग बनाने वाला है, और तुम तो भगोड़े हो, कायर हो। नहीं तो भगवान इस सृष्टि पर आकर क्या बना कर जाता है, कौन सा पद दे करके जाता है स्त्री पुरुष को? विष्णु पद देकर जाता है। विष्णु को कैसा दिखाते हैं? सर्प सर्पिणियों की शैया पर लेटा हुआ है, लेकिन उसको कोई भी तकलीफ नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, बिल्कुल बेचैनी नहीं, आराम से पड़ा रहता है। ऐसा प्रैक्टिकल जीवन तुम बच्चे इस संगम युग में देख करके बनाएंगे क्या? जैसा काम बड़ा करे बड़े को देखकर, छोटे भी करेंगे। तो पहले इस मनुष्य शक्ति के बेहद का बाप जो बड़ा था बड़ा है मनुष्य शक्ति में, उसको पहचानने की बात है। पहचान करके मानने की बात है, मानना है, समझना है, समझाना है और एवरलास्टिंग समझाना है, एवरलास्टिंग मानना है। ऐसे नहीं आज निश्चय पत्र लिख करके दिया, हमारा बेहद का बाप हमको मिल गया, संसार के सामने ढिंढोरा पीटा, और कल क्या कहते, निश्चय बुद्धि बन के रहते बाप के बच्चे मर तो नहीं जाते है? बाप के बच्चे आज बनते कल मर जाते। तो एवरलास्टिंग पहचानने वाले हुए, मृत्युलोक के वासी हुए या अमरलोक के वासी हुए? मृत्युलोक के वासी हुए। क्यों 80 साल के बाद भी क्यों? क्योंकि 80 साल में भी जो अमरलोक का वासी है, अमरनाथ कहा जाता है, न बनने वालों का स्वामी, मरने वालों का नहीं, किसका, हद में मरने वाले या बेहद में मरने वाले है? बेहद में, जो आज बाप के बच्चे बनते, जिंदा होते, बाप को पहचानते, बाजे बजाते हैं जन्म लेने पर कि भगवान बाप आ गया। बच्चा जन्म लेता है तो बाजे बजाते हैं ना, खूब बाजे बजाते, आज बाजे बजाते और कल कल मौत की नींद सो जाते, बाप को भूल जाते, मर जाते, मुर्दा बन जाते। तो ऐसों को अमरनाथ का बच्चा कहेंगे, है? तो क्यों नहीं कहते सदा काल के लिए कि अमरनाथ बाप आया हुआ है, है? आया हुआ है या नहीं आया हुआ है?
आया हुआ है,
आया हुआ है।
सदा काल के लिए कहेंगे आप,
है?
सदा काल के लिए कहेंगे।
साकार आया हुआ है,
सदा काल के लिए कहेंगे आया हुआ है,
आया हुआ है। फोटा खींचो, फोटा। हाँ,
आया काल नहीं आया कहीं है,
ऐसे नहीं है। माया परीक्षा लेने वाली है। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, ध्वस्त कर दी। ये 3री बार है, 3री बार सृष्टि रची गई 76 में एडवांस ब्राह्मणों की, और 3री बार भी ध्वस्त होने वाली है। माया और माया ने हाथ मिला करके प्रकृति से डबल पावर से भी ज्यादा पावर धारण कर ली। अब माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है,
तो कहते हैं हर्षदेव को भी छोड़ने वाला नहीं है,
नहीं है।
हमने तो दृढ़ संकल्प लिया है,
अगर छोड़ेगी, अगर उन अष्टदेवों को छोड़ेगी तो उनके 8 नंबर कैसे बनेंगे? 8 नंबर तभी बनेंगे जब एक बार 7 टोटल मौत के घाट उतार दिए जाए। जो पहले पहले बाप का बच्चा बने वो पहला अष्टदेव, क्योंकि बाप तो मरता ही नहीं, वो तो प्रकृतिपति है, वो तो मायापति है, मरने का सवाल ही नहीं। तो जो मृत्यु गोद में सोने के बाद पहला पहला नंबर बाप की गोद का 2500 वर्ष का बच्चा बनेगा, अविनाशी, अमर पद पाने वाला, वो पहला नंबर देवता, फिर नंबर वार दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां नंबर तब ही बनेंगे अगर 8वीं जीते जागते रहें, तो नंबर नहीं बन सकते।
बाबा जी एक बात पूछनी
है,
एक बात पूछनी है बाबा।
हाँ जी,
बाबा ने कहा है अपना दोस्त संगत ठीक है,
हाँ,
और उसने भी कहा है जो भिखारी कमाते उसका कमाई नहीं खाना है, बाबा ने कहा।
हाँ,
तो हमको तो जो था तो बाल बच्चों के लिए उड़काने पढ़ाने में खर्च किया
है,
उड़काने पढ़ाने में जो कमाई करने में खर्च किया।
आप कब से ज्ञान में चल रहे हैं?
हमारे पास, हमारे पास है नहीं कुछ।
ज्ञान में कब से चल रहे हैं?
ज्ञान में तो बेसिक में हो गया 7 वर्ष है, और
11 साल। 11 साल पहले आप ज्ञान में चले, और 11 साल पहले ही कह दिया दागली पढ़ाई नहीं पढ़ानी है, दागली पढ़ाई पढ़ेंगे तो डॉग एंड विचेस, कुत्ता कुतिया बना देंगे।
बेसिक में तो अंधे में था ना बाबू का, बेसिक में तो उनका अंधा हो गया था,
अंधा हो गया था, मुरली नहीं सुनते थे,
भक्ति मार्ग आया ना सब।
यहाँ भी बत्ती मार गए। अगर यहाँ बत्ती मार गए न हो तो क्यों विनाश हो जाएगा? यहाँ भी गुरुडम चलता है, यहाँ भी गुरुडम चलता है। महाकाली की भुजाएं सब बनने वाले हैं। जैसे महाकाली काला मुंह करती है, ऐसे सारे ही कम या ज्यादा रावण के बच्चे बने पड़े हैं। ओम शांति।
आनंद हमको पड़ता है, मकान भी बन पाया है, हमारे पास कुछ नहीं है। बाबा ने बोला भिखारी ने कमाया, वो तो खाना नहीं है।
बाबा ने साथ में ये भी बोला, लौकिक परिवार के साथ तोड़ भी निभानी है, नहीं बोला? हाँ, तो बुढ़ापे में जब हाथ पांव नहीं चलते, बेड रेस्ट में है, कब हाथ पांव नहीं चलते यहाँ नहीं आ सकते, टोटल बेड रेस्ट में है, कुकर में दाल चावल सब्जी, जो बाबा ने कहा सबसे बढ़िया भोजन है क्या, दाल चावल आलू, वो तीनों चीजें तीन बर्तन में रख करके उठा के अंगीठी पे रखना है, देखते रहना है बाबा की याद में। इतना भी नहीं कर सकते, ऐसे लुंजुम पुंजुम हो गए, तो उनकी परवरिश करना बाप के बच्चों का हक है, और बाप को उन बच्चों से लेना हक है। हाँ जी, लेना हक है, लेकिन ऐसा लुंजुम पुंजुम बनना ये पूर्व जन्म के हिसाब किताब है या इस जन्म के हिसाब किताब है? तो बता तो दिया आपने, जिन बच्चों को शरीर दिया, जैसे शरीर देने के आप निमित्त बाप बने, उस रचना से अपने परवरिश के लिए दो रोटी का पैसा नहीं ले सकते? ले सकते
हैं। कंफ्यूज था, इसीलिए पूछा।
कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। तो बोला वो पतित पावन फादर है, पतितों को पावन बनाने वाला है, धर्म पिताओं की तरह नहीं है कि जब से धर्म पिताएं आते हैं इस दुनिया में तो जो पावन देवताएं हैं उनको भी संग के रंग से क्या बनाए देते, पतित बनाए देते, व्यभिचारी बनाए देते, डॉग एंड बिचिस बनाए देते। तो पता है क्या, पता है पति से पावन कैसे बनते हैं और पावन देवता से राक्षस कैसे बनते हैं, मालूम नहीं पड़ा क्या? है साकार या निराकार? हाँ, ऐसा साकार जो निराकारी निरंतर स्टेज धारण कर ले, नबी धारण कर ले, तो भी देखना है कि हमारे मुकाबले निराकारी स्टेज में याद में और ज्ञान में और सेवा में आगे है या पीछे है, क्या देखना है? जो बोला कि निराकार याद नहीं रहता है तो बड़े रूप को भी याद करना चाहिए, यथार्थ बड़ा रूप कौन है? जिस साकार में मुकर रूप से आता है वो बड़ा रूप। तो उसको भी याद करेंगे तो भी जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे या नीचे बनेंगे, नीचे बनेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान के पांव की धूल भी लेते हैं, भगवान के चरणों को धो करके पीते हैं। वो तो स्थूल बात हो गई, यह है बुद्ध रूपी पांव की बात। क्या बुद्ध रूपी पांव को धोकर पीने की बात है, बेहद की बात है, हद की बात नहीं। ओम शांति।